असंग जान के और यही है ना। अच्छा, तथापि मंद बोध के अभास रूप कर्म और अभास रूप उपासना भी विरोधी है। मंद बोध जिसको है, मंद बोध माने बहुत कम ज्ञान है उदे उदे, हाँ जी ना, सूक्ष्म बुद्धि नहीं, मोटी बुद्धि। हाँ जी हाँ जी, वो जो मंद बोध उसको क्या है, मंद बोध है, मंद माने बहुत कम ज्ञान। उदे वास्ते अभास रूप कर्म और अभास रूप उपासना भी विरोधी है। भले कर्म अभास रूप ही है, वो कह रहे हैं कर्म तो अभास रूप है और उपासना उपासना भी अभास रूप, अभास मैंने बस भास रहा, प्रतीत हो रहा है, कुछ नहीं है, प्रतीति मात्र। तो उदे वास्ते ये भी विरोधी है, मंदबोध वास्ते भी विरोधी है। मंदबोध भी की करे, सर्वण मनन निध्यासन में लगे। हाँ, सर्वण मनन सिकंदर इधर आ, इत्थे आ मेरे पास, आ दोनों आ जाओ। मंद बोध के अभास रूप कर्म और अभास रूप उपासना भी विरोधी है। काहे ते, क्यों, जो संशय आदि रहित बोध है सो मंद बोध कहिए है। संशय आदि के सहित संशय भी है, बनया हुआ है मन में भी, पता नहीं मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, शरीर हूं कि ए, संशय मैंने भुलेखा शक दुविधा विच रहना, मैं ये शरीर हूं या आत्मा हूं, मैनू तो प्रतीत हो रहा मैं शरीर हूं, अब वेद कह रहा है, गुरु कह रहा है तू शरीर नहीं है, ये दुविधा विच कभी इस पासे आ जाना, कभी इस पासे आ जाना। डगमग छाडरे मन बौरा, ये है डगमग, डगमग मैंने डोलना। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ से डोरा। जो संशय आदि के सहित बोध है सो मंद बोध कही है। सुन लिया गुरु से और वेद से, सुन लिया है मैं ब्रह्म हूं, तू ब्रह्म है, पर मैं ब्रह्म कैसे हूं ये अजय नहीं ज्ञान नहीं होया। हाँ, उन्हों कहते हैं संशय आदि सहित बोध, बोध तो होया है उसको, पर संशय आदि सहित है, संशय भी बनया हुआ है, ठीक है ना, संशय निवृत्त नहीं होया। जाके अंतःकरण में आत्मा, देखो जाके अंतःकरण में आत्मा असंग है अथवा नहीं है, ऐसा कदाचित संशय होवे। देखो संशय का स्वरूप दस देता, क्या आत्मा असंग है अथवा नहीं, अथवा मैंने जहां आत्मा असंग है या नहीं संग, या उसको ये शरीर का संग है, संग मैंने संबंध, आत्मा दा आत्मा संबंध से रहित है जां उदा अंतःकरण दे नाल जां शरीर दे नाल संबंध है, ऐसा जी को ज्ञान उन कहिंदे संशय ज्ञान। हां, आत्मा असंग है अथवा नहीं है, ऐसा कदाचित संशय होवे, सो पुरुष जो बारंबार आत्मा असंग है मेरे को किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं जां अर्थ को चिंतन करे, तब तो संशय दूर होके दृढ़ बोध हो जावे। जिसको मंदबोध है ओदी युक्ति दस रहे हैं। मंदबोध क्या है, पहले मंदबोध दा ना स्वरूप दस दिता, मंद बोध क्या है, आत्मा असंग है अथवा नहीं, ये तो मंदबोध का स्वरूप दस दिता, ठीक है, पर ये मंदबोध जड़ा है ये दृढ़ कैसे होवे, संशय निवृत्त कैसे होवे। वो तो कह रहे ऐसा कदाचित संशय होवे, सो पुरुष जो बारंबार आत्मा असंग है मेरे को किंचित करे, सो पुरुष जो बारंबार आत्मा असंग है मेरे को किंचित कर्तव्य नहीं है, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा जो चिंतन करेगा ओदा भी बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। मेरे को किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं जहां अर्थ को चिंतन करे, तब तो संशय दूर हो के दृढ़ बोध हो जावे, और कर्म उपासना करेगा तो मंद बोध उत्पन्न हुआ है सो भी दूर हो जावे। जेड़ा मंद बोध उत्पन्न हुआ है वो भी नष्ट हो जाएगा कर्म उपासना में लग गया, क्यों, पहले उन संशय बनया मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, तो जे शरीर नु पकड़ के बैठ गया तो आत्मा तो छुट गया ना फिर, इसलिए ओदा भी अधिकार नहीं है कर्म उपासना से। जिहड़ा ज्ञानी है ओदा भी अधिकार नहीं है, वो करे अथवा ना करे उन्हों कोई लेप भी नहीं है, वो कर भी लवे तां भी ओदी हानि नहीं है, ना करे तां भी हानि नहीं है। और जो जिसको उत्तम जिज्ञासु जिसको है उदा भी कर्म उपासना में अधिकार नहीं है। वो कह रहे मंदबोध का भी अधिकार नहीं है, जिन्हों मंदबोध हो गया उदा भी कर्म उपासना में अधिकार नहीं है। वो की करे, यही चिंतन करे, वेदांत चिंतन। मैं करता भोगता हूं, जह विपरीत निश्चय हो जाएगा। देख लो, कर्म उपासना करोगे तो ये हो जाएगा, कर्म उपासना करोगे तो की हो जाएगा। मैं करता भोगता हूं, जह विपरीत निश्चय हो जाएगा। जाते मंद बोध की उत्पत्ति से पूर्व ही कर्म उपासना करे और अनंतर नहीं। पहले जड़े कर्म उपासना कर ले, मंद बोध उत्पन्न हो गया फिर कर्म उपासना विच ना लगी। पहले जड़े कर्म उपासना कर ले, मंद बोध उत्पन्न हो गया फिर कर्म उपासना विच ना लगे। अगर लगेगा तो जड़ा मंद बोध थोड़ा मोटा ज्ञान होया वो भी नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट क्यों होगा? नष्ट इस वास्ते होगा, क्यों नष्ट क्यों होगा? नष्ट इस वास्ते होगा, पहले तुसी चिंतन कर रहे हो मैं असंग हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। आप जो कर्म उपासना करोगे तो शरीर नू लेके करोगे तो वो छड़ के करोगे ना, मैं ब्रह्म हूं, तो फिर की आओगे, मैं जीव हूं। ये धारणा करके कर्म उपासना करोगे ना तो वो तो गया ना, फिर मंद बोध जेड़ा थोड़ा मोटा उत्पन्न भी हुआ। फिर इन्हू कहते अरूढ़ पतित, ऊपर चढ़ के गिर जाना। इसलिए मैं राजू हूं हरदीप नू कई बार कह चुका हूं, ताड़ा कर्म उपासना विच अधिकार नहीं रह गया प्रधान जी, हुण जिहड़े काम लगे लग जाओ बस। हाँ, कर्म भी बेड़ी दी जिहड़ी है समर्था कित्थों तक है? जिथों तक जल है वो तुहानू उत्थों तक लै जाएगी। आगे दूसरा साधन करना पड़ेगा। और जिहड़ा दूसरा साधन है गाड़ी करोगे थल में, तो थल कित्थों तक? जहां तक पहाड़ है उत्थों तक तुहानू लै जाएगी। आगे फिर वो भी छड़नी पड़ेगी। फिर मान लो तुम हैलीकॉप्टर चढ़ जाओगे तो हैलीकॉप्टर की भी तो सीमा है ना, कितनी हाइट तक जा सकता है। उस तो फिर पैदल ही चलना पड़ेगा। इस रास्ते जेड़े कर्म है उपासना है इन्हां दी सीमा है, वो सीमा तो आगे करोगे। हुण आगे दा दृष्टांत पिछले दिता कि आगे आएगा। मुर्गी देखी आपने, बच्चे अंडे से बैठ के निकाल दिए ना, वो कब तक सेकेगी अंडियां? जब तक बच्चा अंडे फोड़ के बाहर नहीं आ जाता। जो तो बच्चे बाहर आ जाएंगे फिर वो नहीं बैठेगी ऊपर, अगर फिर बैठेगी तो पंख गल जाएंगे, इतनी गर्मी है बच्चे दे। अगर फिर बैठेगी उपासना विच तो फिर बच्चे दे पंख भी गल जाएंगे। इसलिए जे तुसी फिर उपासना करोगे कर्म उपासना की तो मंद बोध भी नष्ट हो जाएगा। ये होना अपना सोच समझ के कर लेना। जो मंद बोध वाला कर्म उपासना करेगा तो उत्पन्न हुआ बोध नष्ट हो जाएगा। देख लो स्पष्ट। जो मंद बोध वाला कर्म उपासना करेगा तो उत्पन्न हुआ बोध नष्ट हो जाएगा। दृष्टांत देखो आ गया जी। जैसे पक्षी अपने अंडे को पक्षी की उत्पत्ति से पूर्व सेवन करे हैं, पक्षी है वो अंडे दिते बच्चे निकालने वास्ते, कब तक उन्होंने सेकेगा? जब तक बच्चे नहीं निकलते। बच्चे दे उत्पन्न हो गए अंडे च बाहर आ गए फोड़ करके, फिर और पक्षी की उत्पत्ति से अनंतर नहीं। जो पक्षी की उत्पत्ति से अनंतर भी अंडे को सेवन करे तो बाल पक्षी के ता अंडे के जल से पक्ष गल जावे, उदे पंख गल जाणगे। अंडे दे विच थोड़ा तरल पदार्थ होवेगा, वो तरल पदार्थ जिहड़ा वो जो मुर्गी फिर भी कोई पक्षी फिर भी अंडे ते बैठा रहा तो उदे पंख बच्चे दे गल जाणगे। यही हाल कर्म उपासना वाले दा है। तैसे ज्ञानी की ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व ही कर्म उपासना का सेवन करे, पहले पूर्व मैंने पहले, ठीक है। ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व, ज्ञान जब उत्पन्न नहीं होया उस तो पहले जब मंद बोध उत्पन्न हो गया फिर कर्म उपासना छोड़ देवे, ठीक है, तैसे ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व ही कर्म उपासना का सेवन करे और ज्ञान की उत्पत्ति से अनंतर नहीं, जो ज्ञान की उत्पत्ति से अनंतर भी कर्म उपासना का सेवन करे तो बाल पक्षी की न्यायी मंद बोध का नाश हो जावे और वृद्ध पक्षी की जैसे अंडे के संबंध से हानि होवे नहीं, तैसे देखो आज कितना सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं। बच्चे दे पंख से गल जाएंगे छोटे दे, और जेड़ा बड़ा पक्षी है वो दे नहीं गलनगे, जेड़ा ऊपर बैठा उन्हें सेक रहा है ना मुर्गी वो दे नहीं गलनगे, क्यों? वो दे दृढ़ बोध हो गया। इस बात जेड़ा दृढ़ बोध हो गया ज्ञानी पुरुष वो भले कर्म उपासना करता भी रवे उदा ज्ञान नष्ट होने वाला नहीं है। बाल पक्षी की नहीं मंद बोध का नाश हो जावे और वृद्ध पक्षी जैसे अंडे के संबंध से हानि होवे नहीं, तैसे दृढ़ बोध की तो हानि होवे नहीं और वृद्ध पक्षी की नहीं दृढ़ बोध को कर्म उपासना से उपयोग भी नहीं। जेड़ा दृढ़ बोध हो गया उन्हें कर्म उपासना का कोई फल भी नहीं मिलने वाला, क्यों? कर्म उपासना का फल की है? अंतःकरण शुद्ध, उन्हें तो ज्ञान हो गया, उन्हें अंतःकरण की शुद्धि की जरूरत ही नहीं। इस रीति से ज्ञानवान को मोक्ष के निमित्त किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं, जह तृतीय प्रश्न का उत्तर कहया। तीन प्रश्न किते सी ना अग्रद देव ने, केड़े केड़े? पहला, हे भगवान मैं कौन हूं, जय 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 संसार कायते हुए ये संसार कितों उत्पन्न हो रहा है, अपने आप जा ईश्वर से, है ना? आगे ज्ञान का हेतु कौन है, कर्म जा उपासना जा दोनों? ये तीन प्रश्न सी, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, तीनों प्रश्न का उत्तर कह देता। उक्त अर्थ सर्व वेद का सार है। देखो जिहड़ा कह रहा मैं उपर अर्थ तुहानू दस दिता, ये सारे वेदों का निचोड़ है, देख लो कितनी परोपकारी पुरुष हुए जिन्होंने हिंदी दे विच ग्रंथ लिख दिता। हुण आपां वेद नहीं पढ़ सकते ना, तो वेद का सार की है? सार मैंने निचोड़, निचोड़ कह रहे ये जिहड़ा तुहानू दस दिता ये वेद का निचोड़ ही है। जो शिष्य को आचार्य ने उत्तर कहे सो वेद के अनुसार कहे, जाते यथार्थ है जह वार्ता कहेंगे। अब ये कहेंगे शिष्य कहो जो तू मैं सर्व वेदन को सार लहे ताही अन्यास ही संस्कृति नसे अपार। अब गुरु कह रहे हे शिष्य कहो जो तो है मैं तेरे को जो मैं कहया जिड़ा तेरे को मैं दसी गल सर्व वेदों को सार वो सारे वेदा का निचोड़ है, ठीक है। लहे ताहे अन्यास ही उदे नाल अनायास मने आसानी से, बड़ी आसानी से संस्कृति नसे अपार पारावार से रहित जो संसार है ये नष्ट हो जाएगा तेरा। ये वेद का सार जे तू अपनी बुद्धि दे विच ग्रहण कर लेना तू। हे शिष्य जो मैं तेरे को कहया सो सर्व वेद का सार है, जाते जा विषय विश्वास कर और जाके जानने ते अनायास कहिए खेद बिना अपार जो संस्कृति कहिए जन्म मरण संसार ताका नाश हुए हैं। संस्कृति क्यों कहा? संस्कृति मैंने संसार, संस्कृति कहा सने सने संसर्ति इति संसारा, जो शने शने मैंने धीरे 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 नाश की ओर जा रहा है उन्हें कहते हैं संसार। सरक संस्कृति मैंने सरकरा खिसकना सरकना कुछ भी कह लो, है ना, यही है संस्कृति मैंने सरकना खिसकना, जो धीरे धीरे सरक रहा है उन्हें कहते हैं संसार। भाषा की संपर्दा, देखो अब कह रहे हैं भाषा की जिहड़ी संपर्दा है ना उहदे विच जिहदा खा है ना खा उहदे छा मुर्दन हिंदी च तीन सकार हुंदे आ, संस्कृत विच एक तालवी सकार एक मुर्दनी सकार एक दंती सकार। अब दंती सकार किनू कहिंदे आ, जैसे जिहड़े सस्से दे नाल आपां सीता शब्द लिखांगे ना माता सीता दा नाम लिखांगे ते केड़ा सस्सा लवांगे हिंदी दा सा, उहनू कहिंदे दंती सा। एक हुंदा तालबी सकार शंकर भगवान शंकर का नाम लिखेंगे तो शंकर जेड़े शाह ना लिखेंगे उन्हें कहते तलबिसकर। ठीक है, एक है मुर्दनी सकार धनुष, और धनुष के पिछे जेड़ा शाह है वो उन्हें कहते हैं मुर्दनी सकार। ये थोड़ी संप्रदा या पढ़ोगे व्याकरण तो पता चलेगा ना, ऐसे कितना पता चल रहे। हाँ जी, वैसे तो पंजाबी वाले बनाए तो है ही आ, तेने ने भी बनाते एक सस्सा, एक वो पैर च बिंदी लगा दी, एक शाह दूसरा। हाँ तेने तो बनाए दिते उन्हें भी, भावे धक्के ने बनाए। चलो, अब भाषा की संप्रदा, जब भी खेद का नाम अनायास है और अभाव का नाम अनायास है आयास है, जब भी खेद का नाम आयास है ताके अभाव का नाम अनायास है, तथापि छंद के वास्ते अनायास पड़िया है, क्योंकि छंद वास्ते कह रहा भी जे अक्षर वध घट भी हो जाए ना तो उस दोष नहीं होंगे। जे मुर्दनी सकार की जगह जिदा छठ है ना, छठ शिष्य, शिष्य दे थां सिख भी लिख दोगे तो चलेगा, छठ है ना छठ शिष्य, शिष्य दे थां सिख भी लिख दोगे तो चलेगा, वो सही मनिया जाएगा। खट, खट संपत्ति, छा दे थां टा भी लिख दोगे तां भी चलेगा छठ, या खट संपत्ति भी लिख दो तां भी चलेगा, या छठ संपत्ति भी लिख दोगे तो भी चलेगा। यही वो दस रहे थोड़ा जा, भाषा में छंद के वास्ते गुरु के स्थान में लघु, गुरु किनू कहिंदे आ, गुरु मैंने देखो ये संस्कृत विच कोई शब्द उचारना होवे ना तो उहदे विच तीन मात्रा होंदियां, हरस दीर्घ पलुत, एक होंदी हरस एक दीर्घ एक पलुत। मुर्गा बोलदा सुनिया किसी ने, अते वह जो बोलेगा ना वह तीनों मात्रा बोलेगा, पहली मात्रा जिहड़ी हरस होगी, दूसरी दीर्घ, तीसरी पलुत। जैसे किसी नूं दूर से आवाज मारनी है तो आप जरा आखिरी अक्षर होगा ना उन्हें पलुत करांगे, जैसे ओ कृष्णा ना नूं पलुत कर देंगे, लंबा कर देंगे। चलो ये ज्यादा विस्थार च नहीं जावांगे क्यों समझ में आने वाली नहीं ये चीज, पर थोड़ा जिहा तुहानूं टेलर दिखा दिता है कि संस्कृत ऐसी है। भाषा में संत के वास्ते गुरु, गुरु मैने दीर्घ, ठीक है, लघु मैंने छोटा एक मात्रा वाला, हरस दीर्घ प्लुत ऐसे उन्हें लघु भी कह देंगे। गुरु के स्थान में पढ़िया दोष नहीं, और मोक्ष के स्थान में मोक्ष भी भाषा में पाठ होवे है, काहे ते जह भाषा की संप्रदा है, लघु गुरु गुरु लघु होता है वृत्ति हेतु उचार। वो कह रहे हैं लघु के स्थान पर गुरु भी पढ़ लो तामी ठीक है, और गुरु के स्थान में लघु मैंने बड़े अक्षर से स्थान छोटा अक्षर, छोटे मात्रा के स्थान बड़ी मात्रा भी आप उच्चारण कर देंगे हिंदी दे विच ते दोष नहीं मन्या जाएगा, शुद्धि मन्या जाएगा। रूह है अरुकी ठौर में, रू जा रू लिख दो जा हवै लिख दो, वो एक ही है। अब की ठौर बकार जा अब लिख दो, जे अब नहीं लिखना खाली वाह पा दो, वाह लिख दो अर्थ भी अब होगा, और संस्कृत विच वा पा दोगे उहदा अर्थ हो जाएगा विकल्प। जैसे अंग्रेजी में की लिख देंदे और लिख देंदे ना, ये प्रश्न करो जां ये वाला करो, उहदा की अर्थ लगाओगे जां, है ना। ऐसे हिंदी संस्कृत विच वा पा देंगे, वा पा देंगे तो उहदा अर्थ हो जाएगा जां ये वाला जां ये वाला, यही वो कह रहे हैं। अब की ठौर बकार संजोगो क्षा ना का पर खाना नहीं टकार अणकार। संजोग देखो का शाह है ना, क्षा एक कक्षा कैसे बनेगी, अब कक्षा लिखना हो तो क्या पहला पहला वर्ण केड़ा है का और फिर क्षा, एक क्षा दो अक्षरां ते बनिया, ये वैसे हिंदी विच है नहीं है, ये दो संयुक्त अक्षर होणगे तां क्षा बनेगा, और ग्या ये दोनों अक्षरां तो बनता है, ये किड़े किड़े अक्षर है दो, एक ते कक्का है अद्धा अद्धा शिशा क्षा कक्षा ताई बनेगा ना, कक दो कक्के हो गए ना, एक पूरा एक अद्धा कक शा, ठीक है। और टकार के थां पर नकार भी हो जाएगा, टा के थां पर नौ। भाषा में री लरी नहीं हुआ, भाषा में री के स्थान पर लरी भी लिख दे दोगे तो चलेगा, ठीक रहेगा। और तालबी सकार छा, जहां तालबी की सकार के स्थान पर छा भी लिख दोगे तो भी चलेगा। इतने अक्षर भाषा में नहीं कोई लिखे तो कभी अशुद्ध कहे हैं। अगर इतने नहीं लिखोगे तो फिर की कहेंगे कभी, देखे कहेंगे ठीक नहीं लिखी कविता, अशुद्ध है, ठीक है ना। कक्षा के स्थान पर शाह, देखो शाह के स्थान पर खाली शाह लिख दो तो भी चलेगा। शाह के स्थान पर खो, अणकार के स्थान पर नौ, रील री के स्थान पर रील री है, शिकार के स्थान पर सकार भाषा में लिखने योग है। जगत का कर्ता ईश्वर है सो तेरे से भिन्न नहीं, और सतचित आनंद रूप ब्रह्म तू है, जह आचार्य ने कहा सो कृपा ते फिर कहे। गुरु ने की कहता, गुरु ने कह देता जगत का कर्ता ईश्वर है। तीन प्रश्न किते सी ना, जगत का कर्ता कौन हो गया, ईश्वर। मतलब कहन दा ये अपने आप नहीं बनया। गुरु नानक साहब की कह रहे हैं, कर्ता पुरख, ये जगत का अपने आप नहीं बन गया, ये वो जरा पुरुष है ओदी रचना है, ये ओदी सारी उत्पत्ति है। फिर पुरुष दे अगे विशेषण दिते गए आ कि पुरुष कोई जीव है। फिर आगे कोई ए भ्रांति ना हो जाए भी जीव ही होगा कोई पुरुष, ओदे विशेषण दस के वो फिर उन्हों अकाल पुरख दे नाल मिलाया है। ये जीव दी रचना नहीं है, वो पुरुष कैसा है, निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी, जूना दे विच नहीं होंदा, जन्म मरण तो परे है। तो फिर जन्म मरण तो परे है तो प्रगट कैसे हुआ, स्वयंभंग अपने आप। तो जड़ा अपने आप प्रगट होया वो जाने किदा जावे, गुरु प्रसाद गुरु कृपा से अपने आप जाने नहीं जा सकता, अपने आप तो गल नहीं बनने वाली ना। भी गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं, वो तुसी कहावत सुन, जगत का कर्ता ईश्वर है सो तेरे से भिन्न नहीं, और सत चित आनंद रूप ब्रह्म तू है, जह चारिया ने कहा सो कृपा ते फिर कहे हैं। दीनता को त्याग नर अपनो स्वरूप देख, आहा करे दीनता, दीन क्यों बनी बैठा तू, तो दीन दुखी क्यों बनी बैठा, अपने आप नु दीन दुखी क्यों समझ रहे हैं, की करा प्रभा मैं तो जीव हूं बहुत दुखी हूं, ऐसा क्यों समझ रहे अपने आप नु, है ना। दीनता को त्याग नर, हे जीव तू अपने आप नु जीव ना समझ, वो अपने आप नु ब्रह्म समझ। नर मने पुरुष, हे पुरुष तू क्या कर, दीनता को त्याग दे, ते क्या कर अपना स्वरूप देख, अपने आप नु पहचान, अपने आप नु पहचान, ते फिर दीनता दा त्याग कर। सो तू शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है, देखो सो तू तो शुद्ध ब्रह्म अज मैंने अजन्मा, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज, शुद्ध मैंने अविद्या आदि दोषों से रहित, है ना, अविद्या आदि पांच दोष है ना उनसे रहित ब्रह्म मैंने व्यापक, अज मैंने अजन्मा, तू तो अजन्मा ब्रह्म है और दृश्य को प्रकाशी है, सब दृश्य को प्रकाशित करने वाला तू ही है, मतलब तू दृष्टा है, ठीक है। अपने अज्ञान ते जगत सब तू ही रचे, अपने अज्ञान ते जगत सब तू ही रचे, अपना जो तेनों देखो सपन दे विच तुसी कल्ले ही हुंदे जे, जिहड़ा सपन देखने वाला वह कल्ला ही है, तो जगत की रचना होगी वह जगत कित्थों आ गया, वह जदों सपन दे जिहड़े सी कर्म उत्पन्न हुए भोग देने वास्ते, सुख दे दुख दे भोग देने वास्ते वह सन्मुख आए कर्म, अपनी सृष्टि जीव ने रच ली, वह कित्थों आई, मटीरियल कित्थों आया, तो है कितने सी, एक ही है, एक ही सी। जे तुसी उस समय जे सपन दा जगत देखोगे तो मान लो किसी नूं दूसरा पुरश मिलिया है तुहाडे पिंड दा ही सपन दे विच, ते तुसी उन्हूं जाके पुछो भी मैं अज सपन देखिया तेरे नाल मैं ये गल्लां कीतियां सी, तो वो की कहेगा, वो कहेगा तू देखिया सी मैं थोड़ी देखिया सी। इहदा अर्थ क्या होया कि जिहड़े पुरश नूं तुसी सपन दे विच देख रहे हो आभास मात्र सी, है नहीं सी, वो ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਪਨ ਦੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਭਾਸ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਮਾਤਰ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਜਗਤ ਸਭ ਤੂੰ ਹੀ ਰਚੇ, ਸਰਬ ਕੋ ਸੰਹਾਰ ਕਰ ਆਪ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਜਗਤ ਸਭ ਤੂੰ ਹੀ ਰਚੇ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਕੋ ਸੰਹਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਹਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਆਪ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਤਨੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਲੈ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ? ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਸ ਹੋਊਗਾ? ਇਹੀ ਹਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਬੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਆਦ ਮੱਧ ਕਿਆ ਹੋ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਦ ਪੂਰਨ ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਆਦ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ, ਆਦ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਮੰਗਲਾਚਰਨ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਦ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੈ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੈਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 50 ਦੀਪਕ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪਕ ਜਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਪੜੇਗਾ? ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਹੋ। ਉਹ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਘਟਿਆ ਵੜਿਆ? ਜਿਮੀ ਜਿਮਾ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮਸਤ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾਢ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਬਾਢ ਹੋਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਘਟੇਗਾ ਕੀ ਬੜੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਦੇ ਬੜਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘਟੇ ਬੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕੀ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਵੜ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਏਗੀ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸੱਤ ਵਸਤੂ ਮਿੱਥਿਆ ਵਸਤੂ ਸੱਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਚੱਲਿਆ ਸਾ, ਕਿਤਨਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਹੈਂ ਬਸ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਮਿੱਥਿਆ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇਖ ਦੁੱਖ ਜੀਏ ਆਨ ਜੀਏ ਆ ਮਿੱਥਿਆ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇਖ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਮਿੱਥਿਆ, ਇਸਕੋ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਣ। ਦੁੱਖ ਜੀਏ ਆਨ ਜਿਨ ਆਨ ਜੀਏ, ਦੁੱਖ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਣ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਦੇਵਨ ਕੋ ਦੇਵ ਤੂੰ ਤੋ ਸਭ ਸੁੱਖ ਰਾਸੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੂੰ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਸੁੱਖ ਰਾਸੀ ਹੈ, ਸੁੱਖੋਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਜੀਵ ਜਗ ਈਸ਼ ਹੋਏ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵ ਜਗ ਈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜੋ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਜਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੇ ਪ੍ਰਭਾਸ ਮੇ ਪ੍ਰਭਾਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਭਾਸ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਜੀਵ ईश्वर और मलिन माया में प्रभाव पड़ गया, प्रतिबिंब तो बन गया जीव, फर्क तो इतना ही है। तो फिर गड़बड़ केदे विच है, माया च आत्मा च ब्रह्म च की गड़बड़? हाँ, जैसे रज्जू सांप सीपी रूप है प्रवासी है, जैसे रज्जू में सर्प सीपी में चांदी, और ना रज्जू में सर्प है ना सीपी में चांदी है, हैं? ऐसे ही तेरे को प्रतीति हो रही है जगत दी। बस तू ही अपने आप नू है तो ईश्वर, तो समझी की बैठा है जीव, इतना पे लिखा है बस। राग जार लोभ हार, द्वेष मार द्वेष मारी मार बारी, बारंबार मृग बारी पार बार पेखिए। देखो कह रहे राग जार लोभ हार, राग जेड़ा है राग द्वेष जार इन्हन जला दे, और लोभ हार लोभ त्याग दे, ठीक है ना। राग द्वेष छड़ दे, लोभ लोभ तो बाकी भी ले लेना, ठीक है ना। द्वेष मार, पहले राग कहता फिर आप द्वेष कहता, राग जार लोभ हार द्वेष मार, मार बारी बार बार मृग बारी, बारंबार मृग तृष्णा दे जल की तरह संसार नू देख। जैसे मृग तृष्णा दा जल है, ओदे नाल भूमि गिल्ली हो जाएगी, जल तो है ही नहीं तो गिल्ली की हो जाएगी, ठीक है ना। और पार बार पेखिए, ये जरा पार बार संसार, पारावार से रहित संसार है, इसनु कैसे देख, मृग तृष्णा के जल के समान। जैसे मृग तृष्णा का जल नहीं है, ऐसे ये संसार भी नहीं है। ज्ञान भान आन तम, तम तारी भाग त्याग,